नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म से युधिष्ठिर महाराज बहुत बातें पूछते हैं। राजधर्म के साथ साथ लोक धर्म की भी बातें पूछते हैं, व्यावहारिक बातें भी पूछते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं कि हे पितामह, कभी कभी मूर्खों से पाला पड़ जाता है और मूर्ख आदमी भरी सभा में भले आदमी का भयंकर अपमान करता है, वो तीक्ष्ण बातें बोलता है, चुभने वाली बातें बोलता है, उस समय में उस विद्वान पुरुष को क्या करना चाहिए? उस निंदा करने वाले व्यक्ति के साथ क्या बर्ताव करना चाहिए? पितामह भीष्म ने कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर जी, बहुत सावधानी से सुनो, यह सबके काम की बात है। मूर्ख आदमी के वचनों को सहने के अलावा दूसरा उसका कोई उपाय नहीं है। जो हमारे पर क्रोध करता है, बिना कारण बैर भाव रखता है, उसके ऊपर अरुष्यन रोष नहीं करे तो अपने अंदर प्रेम भाव बढ़, अपने अंदर पुण्य भाव बढ़ता है और हमारे जन्म जन्मांतर के कोई दुष्कृत है, पाप है, वो पाप उस निंदक के ऊपर ढुल जाते हैं, बरस जाते हैं। इसलिए भूल करके भी निंदा करने वाले से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। वो जैसा कहे चुपचाप उसकी बात को सुन लेना चाहिए। क्या तुम आकाश में टिटोड़ियों को नहीं देखते हो? क्या सन्निपात में पड़े हुए किसी आदमी की अनर्गल बातें नहीं सुनते हो? वो जैसे निरर्थक चिल्लाते रहते हैं, ऐसे ही वो भी चिल्लाता रहता है, उसकी परवाह मत करो। देखो, बड़े सावधान रहना युधिष्ठिर। वो व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति कभी लोगों के बीच में जाकर बड़ी बड़ी डींग मारेगा, इदम् उक्तो मया कश्चित् सम्मतो जन संसदि, उस आदमी को मैंने आज भरी सभा में फटकारा है और हमारी बात को सुनकर वो सूख गया, लज्जा से सिर नीचा कर लिया, वो मरने जैसा हो गया। ऐसा वो निंदनीय कर्म करता हुआ अपनी प्रशंसा करता है, उससे वो लज्जित नहीं होता, उस समय सिवाय उपेक्षा के और कुछ नहीं बोलने के आपके पास कोई शस्त्र नहीं है। यद यद ब्रूयात अल्पमतिस तत्तद अस्य सहेत बुध है। युधिष्ठिर, इस सहन शक्ति में तुम कम शक्ति समझते हो? ये सहन शक्ति कोई कम उपाय है? हां, मैं मानता हूं कि सामान्य आदमी के लिए ऐसा सहना थोड़ा है कठिन, पर साहस रखो, सहन कर लो, इसमें बड़ी भारी शक्ति है। मूर्ख आदमी के प्रशंसा करने से भी क्या और निंदा करने से भी क्या? कौवा है वो, चाहे दया होकर बोले चाहे बाया होकर बोले, आखिर कौवे के बोलने का कहां अर्थ रखता है? यदि आपने उसके साथ वाद विवाद कर लिया, उसके साथ यदि आपने यह कह दिया कि क्यों मेरे पर झूठारोपण करता है, क्या तुमने हमको निर्बल समझ रखा है? ऐसे आप उसके साथ वाद विवाद करोगे, इससे सिवाय कलह होगा और कुछ नहीं होगा। जब ये मोर नाचता है तब अपने सारे पांख ऊपर कर देता है। इसी प्रकार से मूर्ख आदमी जब बोलता है तो अपना गंदा हृदय ही प्रकट करता है और कुछ नहीं है। उसके लिए क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे शुद्धि होती है, किससे भला होता है, किससे बुरा होता है, बिल्कुल नहीं देखता। इसलिए उसकी उपेक्षा करो। और दूसरे उन आदमियों का त्याग करो जो प्रत्यक्षम गुणवादी है। सामने तो खूब बड़ाई करता है, वाह साहब वाह मुंडा जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे आदमी, क्या कहने आपके, और परोक्षे चापे निंदक है, और परोक्ष में जाकर निंदा करे जानू मैं। और मुंडा में आगे भाई मुंडा आगे कौन बुरो बने, लारू करे निंदा। उस आदमी को कुत्ते की तरह से त्याग दो, जैसे कुत्ते का स्पर्श भी अपवित्रता करने वाला है, ऐसे से बिल्कुल दूर रहो। कुत्ते की तरह भी नहीं, सारमेया मिशम यथा, कुत्ते का जो मांस होता है उससे भी उस ज्यादा उससे दूर रहो। जैसे सांप होता है वो फण उठा करके ये बताना चाहता है कि मेरे दांतों में कितना जहर है, जहर बताता है वो, निपड़ा रहे अपने आप, वो जहर बताता है। ऐसे ही निंदक व्यक्ति अपने हृदय की कुटिलता को और दोषों को ही बताता है। जो आदमी निंदक आदमी का बदला लेना चाहे वो गधे के समान है, जो राख के अंदर लोटपोट होने के समान। अब राख में लोटपोट होने से अब गधे को क्या मिलेगा, ऐसे ही निंदक व्यक्ति का जो प्रतिकर्तुम यह इच्छति, प्रतिकार करना चाहे मुकाबला करना चाहे कोई लाभ नहीं है। निंदक करने वाला तो मनुष्य के रूप में भेड़िए के समान है, गीदड़ बोलते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है। गीदड़ों से सदा अशुभ वाणी निकलती है, इसलिए निंदक की बातों से दूर रहो। उसका तो व्रत है, वो अपने व्रत पर चलता है कि मैं अपने शत्रुता का व्रत निभा रहा हूं। यदि कोई भला आदमी अपने को दिख जाए कि आदमी बहुत भला है और प्रत्युच्चमानस त्वविभूय एभिर निशाम्य माभूस त्वमथार्थ रूप है, और वो यदि मूर्ख से उलझ गया तो अपने को जाना चाहिए और उस भले आदमी को कहना चाहिए कि अरे ये क्या कर रहे हो आप, इससे बातें कर रहे हो, स्वर्ग के अंदर देवता लोग इसके साथ बात करने का पाप आपका लिख रहे हैं, क्यों बात करते हो, ऐसे उनको जाकर समझाना चाहिए। क्रूर आदमी कुछ भी कर दे, क्रुद्धो दशार्धे नहीं ताड़े द्वा, यदि क्रूर स्वभाव का आदमी कुपित हो जाए, थप्पड़ मार दे, मिट्टी उछालने लग जाए, थूक दे, चुप रहो। जैसे कोई सन्निपात का रोगी डॉक्टर के थप्पड़ मार दे, वैद्य के थप्पड़ मार दे, तो वैद्य बुरा नहीं मानता, वैद्य यही सोचता है कि भाई ये बीमार है, ये क्या करे, उसको थप्पड़ नहीं मारते। युधिष्ठिर महाराज कहे कि महाराज ये साधना है तो बड़ी अच्छी लेकिन बड़ी कठिन है, किसी के दुर्वचन सहते जाओ बड़ा कठिन है। कहते ही क्रोध आता है, भीष्म पिता मैंने कहा कि राजन सामर्थ्यवान व्यक्ति होते हैं जो सावधान होते हैं उनकी परीक्षा ऐसे मौके पर ही होती है, इसलिए यहां तुमको सावधान रहना चाहिए। युधिष्ठिर में राजधर्म में तुमको एक बात बताता था कि जो आदमी जिस जगह के लायक हो उस आदमी को उसी जगह पर रखना, उससे ऊंची जगह पर मत रखना। जिसका कुल नीचा है, जिसका आचरण नीचा है, जिसका व्यवहार नीचा है, जिसकी बुद्धि नीची है, उनको ऊंचे पद पर मत चढ़ा देना। नहीं तो एक महर्षि ने कुत्ते को बहुत ऊंचा बना दिया, उसके समान कष्ट पाओगे। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज कौन महर्षि थे और कौन कुत्ता था जिसको ऊंचा चढ़ा दिया, और क्या ऊंचा चढ़ा दिया महाराज, ये क्या कथा है? तो पितामह भीष्म कहने लगे कि देखो, हमने बचपन में एक बहुत सुंदर कथा सुनी थी। जब हम परशुराम जी महाराज के पास रहते थे, उस समय परशुराम जी महाराज ने हमको शस्त्र भी सिखाया और शास्त्र भी सिखाए। उन्होंने हमको एक कथा सुनी कि हमने भी कथा सुनी पुराने महात्माओं से। क्या सुनी महाराज? कि देखो, एक ऋषि थे, एकांत जंगल में रहते थे, कोई वहां पर मनुष्य वगैरह नहीं था, फल फूल खा लेते बस, और बड़े संयमी, किसी पर क्रोध नहीं, किसी पर कोई राग नहीं, तो द्वेष भी नहीं, कुछ नहीं, इंद्रियों का बड़ा दयमन दमन करने वाले, स्वाध्याय में रत रहने वाले, उपवास आदि से शरीर की और अंतःकरण की शुद्धि करने वाले थे, हरदम परमात्मा में डूबे रहने वाले थे। उन ऋषि के तपस्या का ऐसा प्रभाव था युधिष्ठिर कि उसके आसपास जितने जंगली जानवर थे उनके आश्रम में निर्भय होकर आते, और कितने ही बड़े क्रोधी सिंह वगैरह भी उनके आश्रम में आकर बैठ जाते। सिंह व्याघ्र गणा क्रूरा, बड़े क्रूर, ये एक साथ वहां आते, लेकिन सिंह किसी को मारता नहीं और किसी को दूसरे किसी को मारते नहीं। उस ऋषि का ऐसा प्रभाव था। द्विपिन खड्ग भल्लू का ये चान्य भीम दर्शना, बड़े बड़े जानवर आते और पास में आकर के बैठ जाते थे, और वे कुछ बोलते जानवर अपनी भाषा में, तो वे ऋषि ऐसे थे कि जानवरों की भाषा समझ लेते थे, क्यों किसी मनुष्य के पास तो रहते नहीं थे, सदा इन पशु पक्षी जानवरों के पास ही थे, तो इनकी भाषा वे समझ लेते थे और उसके अनुसार वे उनको बोल भी देते थे और वो उनकी भाषा से समझ लेते। ऐसे करते ऋषि का जीवन चल रहा था। उन दिनों की बात है कि एक कुत्ता, बड़ा अच्छा कुत्ता था, वो कुत्ता उन महात्मा जी का बड़ा भक्त था, बड़ा उपवास करने वाला, शांत स्वभाव का, किसी को भी देखकर भौंकने वाला नहीं। महात्मा जी कोई फल फूल खा ले, उसमें जो बच जाए तो खा लेता, या जंगल के ऐसे पत्ते वत्ते खाता, मांस नहीं खाता था, और महात्मा जी के वहां पर चरणों में ही पड़ा रहता। उन महात्मा के प्रति उस कुत्ते की श्रद्धा बढ़ गई और बड़े स्नेह से महात्मा जी के आश्रम में ही रहता, जाता ही नहीं कहीं। महात्मा जी कभी जाते तो उनके पीछे पीछे पूंछ हिलाता चला जाता है। वो अपनी चेष्टाओं से बता देता कि इस समय मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, बहुत जोर से भूख लगी है, कि वो कुत्ता वहां घूम रहा था तो एक चीता आया, चीता शेर जैसा ही चीता आया, और उसको बहुत भूख लगी हुई। उसने उस कुत्ते को देख लिया तो उसके मुंह में पानी आया कि इसको मार देंगे तो हमको एक कुत्ता मिल जाएगा। तो वो कुत्ता दौड़ करके महात्मा जी के पास आया, अपनी वाणी में बोला, कि महाराज मुझे बचाओ, स्वशत्रु भगवान नेश है, ये चीता मुझे मार देगा, अब मैं इस जंगल में किसकी शरण में जाऊं, यदि मैं कहीं दौड़ के जाऊंगा तो ये मेरे पीछे दौड़ेगा, किसी गुफा में किसी खड्डे में मैं जा नहीं सकता हूं, आप मेरे पर कृपा करो महाराज, आपकी कृपा से मेरा भय दूर हो जाएगा, आप सर्वज्ञ हो सब जानने वाले, कोई उपाय करो। महात्मा जी ने देखा कि भाई ये तो बड़ी आफत आ गई, तो महात्मा जी ने उसी समय उस कुत्ते को चीता बना दिया। तो वो चीता आया, इस चीते को देखा तो वो डर गया कि अरे ये तो मेरे बराबर चीता है, मुझे ही वापिस खाएगा। ऐसा सुंदर शरीर उसका चीते का, महात्मा जी ने बनाया कुत्ते को, तो वो वहां से भाग गया। अब जब वो भाग गया तब जो है वह वहां पर रहने लगा कुत्ता चीता बना हुआ। अब चीता बन गया, पहले तो वो कोई मांस वगैरह खाता नहीं था, अब चीता बन गया तो मांस वगैरह खाने में रुचि हो गई, मांसभोजी हो गया। व्याघ्र चोटज मूलस्थ तृप्त सुप्तो हतैर मृग है। अब वो चीता बना हुआ कुत्ता सोए हुए पशुओं को मार देता, पड़े हुओं को मार देता, खा लेता था, और महर्षि की कुटिया के पास ही रहता था। अब जो है उसका शरीर थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा था, वो अब अपने चीते शरीर के अंदर ये अनुभव करने लगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूं और अब मेरे सामने कौन बोल सकता है, तो उसमें अभिमान आ गया, गर्जना करने लगा। तब जो है एक हाथी आया, वो बहुत बड़ा हाथी, उससे भी बड़ा हाथी। अब हाथी चिंगाड़ने लगा और वो चीता अपनी गर्जना किए तो उसकी गर्जना फीकी पड़ गई, देखा अब तो ये मारेगा हाथी, तो वो वापिस ऋषि के पास आया और ऋषि से कहा महाराज ये हाथी मुझे मारेगा। तो कहा अच्छा तेरे को ये हाथी बना देता हूं, तो हाथी बना दिया। अब वो हाथी डर गया कि अरे ये तो हाथी है, मैं तो इसके पास नहीं जाऊंगा। अब वो हाथी के बाद में फिर उस हाथ बड़े सारे हाथी को देखकर एक बड़ा सा सिंह आया, तो वो चिल्लाया तो उसको वापस सिंह बना दिया। अब सिंह सिंह दो हो गए। अब वो सर्व जाति का एक सिंह होता है जिसके 8 पैर होते हैं, ऊंचाई देखा करता है, ऐसा एक सर्व होता है, सर्व सिंह जाति का ही होता है, दिखने में सिंह जैसा ही पर सिंह से बलवान होता है। वो आ गया, उसको देख करके वो घबराया कि महाराज ये तो हम सिंहों को भी मारने वाला है। तब उन्होंने सर्व बना दिया, उसको भी सर्व बना दिया महात्मा जी ने। अब महात्मा जी ने बना दिया तो अब वो सोचने लगा सर्व कुत्ता जो कि सर्व बन गया, कि देखो मैं कुत्ते से यहां तक बन गया हूं, सभी जानवर मेरे से डरते हैं, मैं मांस वगैरह खाता हूं, ऋषि को अच्छा तो नहीं लगता है, परंतु ये ऋषि कब तक मुझे क्षमा करेंगे, भूख लगेगी एक दिन ऋषि को भी मैं खा जाऊंगा, क्योंकि जैसे आज मुझे इन्होंने कुत्ते से सर्प बना दिया, कहीं ये और किसी को भी बना सकते हैं, जो भी इनकी शरण में जाएगा उसको ये ऐसे ही बना देंगे, तो फिर मेरा क्या होगा। ऐसा विचार करके उसने विचार किया कि महात्मा जी रात को सो जाएंगे, इनको जाकर के खा जाऊंगा, इनका खून पी लूंगा और इनको खा जाऊंगा, ऐसा मन में सोचा। तावद एनम अहम विप्रम वधिष्यामि च शीघ्रतः, स्थातुं मया शक्यमि है मुनि घाता न संशय, मुनि को मार करके बराबर कर दूंगा, खा जाऊंगा। महात्मा जी अपने ज्ञान शक्ति से जान लिए, जान के कहा हे शरभ इधर आओ, तेरे मन की खोटाई में जान रहा हूं रे, स्वात्वम दीपत्वम आपन्न है, कुत्ते थे तुम फिर मैंने तुमको चीता बनाया, और द्वीप व्याघ्रत्वम आगत है, चीते से मैंने बाघ बनाया, और व्याघ्रा नाग है, व्याघ्र से मैंने तुमको हाथी बनाया, और नागे सिंहत्वम आगत है, और हाथी से मैंने सिंह बनाया, और सिंह के बाद मैंने तुमको सर्प बना दिया। मया स्नेह परितेन निसृष्टो न कुलान्वय है, देख तू कुत्ता था कितना नीच कुल में पैदा हुआ, मैंने तेरी नीचता पर ध्यान नहीं दिया, तेरे पर केवल दया की, तो मैंने तुझे सर्प लाकर के बना दिया, लेकिन तू इसके लायक नहीं है, तू वहां पर बैठ करके अपने कुल के अनुसार मुझे ही मारना चाहता है, तो ऐसा कर वापिस उसको कुत्ता ही बना दिया, कुत्ता बना दिया और कह दिया अब तू भग जा यहां से, तेरा मर्जी आवे जा जा। तो भाई पितामह भीष्म कहते हैं कि वह वहां से निकल जाने के बाद बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से देखो युधिष्ठिर, बिना परीक्षा किए हुए कभी किसी को ऊंचे स्थान पर मत बैठाना। राजा के लिए इस प्रकार की हुई दया वैसे ही दुख देने वाली होती है जैसे उस ऋषि के लिए कुत्ते के ऊपर की गई दया दुखदायिनी बन गई। अकुलीन नरा कीर्णाम न राजा सुख मेदते, जिनका कुल अच्छा नहीं, आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं, तुम यदि ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को रख दोगे तो वो तुम्हारी बुद्धि से ज्यादा सोचने वाले लोग एका करके तुम्हारे राज्य को भी धक्का दे सकते हैं, जैसे वो शरब बना हुआ ऋषि को भी खाने के लिए तैयार हो गया। तो देखो उन राजाओं उन मंत्रियों की परीक्षा लिया करो, जो हमारे साथ रहने वाले उनकी परीक्षा ले, जो अहंकारी न हो, निर्द्वंद हो, न यत किंचन कारक है, और जो यत किंचित मन जायज हो कर दिया, ऐसे नहीं होने चाहिए, आलसी नहीं होने चाहिए, निद्रालु नहीं होने चाहिए, व्यसनी नहीं होनी चाहिए, और अति हास्यता और बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसना और उद्दंडता पूर्वक ऐसे नहीं होने चाहिए। यस्येतानि न विद्यन्ते, जिसमें ये अवगुण नहीं होते, राजा को चाहिए कि वो उसी को ही अपना मंत्री बनाए। राजा को ये ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो कोष है वो मेरे राज्य का मूल आधार है, तो कोष को सदा संभालते रहना चाहिए। राजा कोष से कमजोर होता है और कोष की कमजोरी कोषाध्यक्ष के पाप से बढ़ती है, और इस कोष का सबसे ज्यादा प्रभाव दुष्प्रभाव सैनिकों पर पड़ता है। जब कोष कमजोर होगा तो सैनिकों को वेतन नहीं मिलेगा, और वेतन नहीं मिलेगा तो फिर वह सैनिकों से कमजोर हो जाएगा, और फिर वो शत्रुओं से घिर जाएगा। कोष्ठागारं चते नित्यम, अपने कोष का भंडार का अनाज के भंडार स्वयं व्यक्तिगत अपने आप निरीक्षण करना चाहिए। अपने मित्रों से, अपने जाति बंधुओं से, इनसे सदा मिलकर के चलना चाहिए। मिलकर के चलने वाला राजा होता है वो बहुत अच्छे ढंग से राज्य कर सकता है। युधिष्ठिर ने कहा महाराज, पहले के राजा लोग किन बातों का विशेषता से ध्यान रखते थे? पितामह भीष्म कहने लगे, सबसे पहले क्षत्रिय लोग प्राणियों की रक्षा का दायित्व अपने पर मानते थे, और जैसे सांप खाने वाला मोर कितना मीठा बोलता है और कैसे रंग बिरंगे पंख धारण करता है, ऐसे ही राजा वाणी से बड़ा मीठा बोलता था, और समय समय पर अनेक रूप मोर की तरह प्रकट करता था, पर भीतर में वो बहुत सावधान होते थे। मौका आने पर बड़े कोमल रहते थे और मौका आने पर बड़े तीक्ष्ण बन जाते थे। दुष्ट लोग उनसे सदा कांपते रहते थे और सज्जन लोग उनसे बड़ा प्रेम करते थे। सज्जनों को ऐसा लगता था कि राजा बहुत दयालु है और दुष्टों को ऐसा लगता था कि राजा अत्यंत कठोर है। ऐसे ही इनका कठोर और सरलता दोनों का भाव रखते हुए राजा को चलना चाहिए। यस्मिन अर्थे हितम यत्स्यात् तद्वर्णम रूपमादिशेत्। जिस कार्य के लिए आपको हित बात मालूम देती हो वो कार्य तुरंत कर लेना चाहिए, उसको भविष्य के ऊपर नहीं डालना चाहिए। अपने राज्य में कोई बहुत बड़े धनी व्यक्ति हो तो उन धनी व्यक्तियों के साथ में राजा को मेल मिलाप से चलना चाहिए और उन धनी व्यक्तियों की सहायता से प्रजा के अंदर दरिद्रता आदि आए तो उस दरिद्रता को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। राजा को चाहिए कि अपने पहरे हुए शरीर पर जो कवच होता है वो कवच कभी न उतारे। पता नहीं है कब किस समय कहां कौन इनके शरीर पर प्रहार कर दे, इसलिए राजा को बहुत सावधानी से रहना चाहिए। परम विश्वास एत सामना, दूसरों पर विश्वास करे, अति विश्वास किसी पर न करे और सर्वथा सब पर अविश्वास भी नहीं करे। जो राजा के विश्वासी आदमी हैं, उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए और भी पुरुष होने चाहिए, लेकिन राजा को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे वो उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे पीछे भी कोई एक है। राजा को चाहिए कि थोड़ी भी आमदनी होती है तो उस आमदनी को प्रजा के लिए बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। यह अग्नि स्तोका वर्धते प्याज सिकता है। देखो अग्नि है, उसमें एक बूंद यदि आपने घी डाल दी है तो एक बूंद उस अग्नि को बढ़ाने में ही सहायक है, घटाने में नहीं है। एक बीज होता है वो हजारों वृक्ष पैदा कर सकता है। ऐसे ही अल्पम अपि आयः, अल्प भी यदि आय होती है उस आय का अपमान मत करो, वो अपने कोष को बढ़ाने में ही सहायक होता है और वो कोष प्रजा का है, इसलिए उस कोष की बेपरवाही नहीं करनी चाहिए। लुब्धम अन्यात् संप्रदानेन नित्यम। जो लोभी आदमी होते हैं उनको कुछ दे ले करके वश में रखना चाहिए। जो दुष्ट आदमी है उनका हर प्रकार से निग्रह करो, शारीरिक निग्रह भी करो और उनको लोभ लालच देकर के भी उनको कहो कि प्रजा के अंदर यदि तुमने कुछ लोभ लालच बढ़ाया तो ठीक नहीं है, ऐसे उनको वैसे भी समझाओ। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज किसके लिए कैसा दंड है? ये दंड की लंबी चौड़ी बातें हैं, किसी को प्राण दंड मिलता है, किसी को अपमान दंड मिलता है, किसी को जैसा अपराध होता है, किसी को भूख दंड मिलता है कि उसको भूखा ही रखा जाता है, अपमान दंड ये होता है उसको नगर के अंदर अपमानित करके जो है हल्ला करके बताया जाता है इस आदमी ने ऐसा किया है ऐसा किया है, ऐसे ऐसे बताते हैं। कहते हैं ये दंड कहां से पैदा हुआ शुरू शुरू में, कि कहने लगे कि एक राजा थे, वो अपने पत्नी के साथ में घूमने के लिए गए तो एक मुंज पृष्ठ नाम का तीर्थ है वहां गए। वहां पर मानधाता जी आए और मानधाता ने उस ऋषि का बड़ा आदर किया। ऋषि ने पूछा, मानधाता जी आप कैसे आए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो मानधाता जी ने कहा कि हे ऋषिवर, बृहस्पति जी को जो ज्ञान है, शुक्राचार्य जी को ज्ञान है, वो ज्ञान आपको भी है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि ये दंड की उत्पत्ति क्यों हुई और इसका क्या प्रयोजन होता है? उन्होंने कहा कि दंड है ये राजा का प्राण है, यदि दंड नहीं होगा तो प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। प्रजा विनय रक्षार्थम, प्रजा को उद्दंडता से बचाने के लिए दंड है। और ये दंड सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से पैदा हुआ है, और ब्रह्मा जी से पैदा होने के बाद फिर ये राजाओं के पास आया। ब्रह्मा जी ने ही राजाओं को क्षत्रियों को दिया है, अब अलग अलग प्रकार के शस्त्र देवताओं को भी दिए और अलग अलग प्रकार के दंड के विधान इनको भी बताए। इस प्रकार से ये दंड है जो कि प्रजा के लिए उचित है, लेकिन सबको एक समान दंड नहीं दिया जाता है। ब्राह्मणों को अलग प्रकार से होता है, क्षत्रियों के अलग होता है, पर इसमें इतना जरूर है कि राजा को अपने परिवार वालों के साथ में कभी पक्षपात पूर्वक नहीं चलना चाहिए कि जो अपने परिवार का हो उसको तो छोड़ दो और जो अपने परिवार का नहीं हो उसके साथ में ज्यादा दंड, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। फिर और भी कई प्रकार की बातें चलती रही। अब युधिष्ठिर महाराज ने बात पूछी कि महाराज अब मैं सार्वजनिक बात पूछता हूं कि इस पृथ्वी मंडल पर शीलवान की बड़ी जो है अच्छी प्रसिद्धि होती है। शीलवान माने अच्छा आचरण करना, इसकी बड़ी महिमा है। धर्म से भी बढ़कर शील की महिमा बताई है, महाराज ऐसा क्यों है? और ऐसा कोई शीलवान पुरुष हुआ है क्या कि जिसके सामने सब नतमस्तक हो गए हों? पितामह भीष्म ने कहा कि देखो, जिस समय दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाता था उस समय में वो रोने लग जाता था। धृतराष्ट्र अपने पुत्र के प्रेम में मोहित हुआ हुआ बोलता है, पुत्र रोते क्यों? तब वो रोते रोते बोलता कि देखो महाराज, मेरा भाई युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में कितने सुखपूर्वक रह रहा है, सब उसके भाई साथ में रहते हैं और सभा के अंदर कैसी कैसी उसमें विशेषता है, जहां हमको अग्नि दिखती है वहां पर कुछ नहीं है, जहां जल है वहां अग्नि दिखती है, जहां अग्नि है वहां जल दिखता है, जहां थल है वहां जल दिखता है, ऐसी ऐसी विचित्र सभा है, ऐसा जो है उसका उत्कर्ष है, कितना धन है, कितना वैभव है, कितना लोगों में युधिष्ठिर के प्रति सम्मान है, ये सब देख करके मेरे मन में बड़ी जलन हो रही है, क्या करूं, ये मेरे दुख का कारण है। धृतराष्ट्र कहने लगे कि बेटा जलती क्यों? तुम्हारे पास कोई धन की कमी नहीं, घोड़े हाथी की कमी नहीं, ऐश्वर्य की कमी नहीं, भाई बंधु तो वो पांच हैं, तुम सो हो और सो भाई तुम्हारे आज्ञा में रहते हैं और वो तो पांच ही तो भाई है, तुम तो उनसे बड़े हो, तुम उनसे अच्छा कपड़ा पहनते हो, तुम अच्छा खाते हो और तुम्हारे पास तो आजनेय अश्व है, आजनेय अश्व होते हैं अरब देश के घोड़े, वो तुम्हारे पास है, फिर तुम क्यों ऐसे करते हो? दुर्योधन कहता है कि महाराज एक आंतरिक जलन होती है, वो बड़ी विचित्र होती है, खुद के पास चाहे कितना ही धन वैभव हो, दूसरे को सुखी देख करके जो जलन होती है पिताजी, वो जलन एक और ही ढंग की, वो मिटती नहीं है। दस्तानी सहस्राणी, मैंने देखा दस दस हजार स्नातक ब्राह्मणों को सोने की थाली में भोजन कराता है युधिष्ठिर, और वो दिव्य सभा है जहां कोई फूल नहीं, जहां कोई कुछ नहीं, ऐसी फूलों की महक आए, जहां नदी दिखती नहीं है लेकिन नदी का पानी का कलकल करता हुआ मीठा मीठा शब्द सुनाई दे, और ऐसे घोड़ों की चिंगार, ऐसे घोड़ों की हिनहिनाहट और हाथियों की चिंगार, और क्या उनका श्रृंगार, हाथियों के गले के अंदर लोहे की सांकड़े हस्तिनापुर में है, परंतु इंद्रप्रस्थ के अंदर उनके वहां सोने की सांकड़े हैं, कोई उनका शत्रु नहीं है, कोई उनकी निंदा नहीं करता है, बड़े बड़े देवता लोग उनका यशोगान करते हैं, कुबेर का ऐश्वर्य भी युधिष्ठिर के सामने कुछ नहीं है, इसलिए मैं शोक में डूब रहा हूं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा अब मैं तुमको बताता हूं कि युधिष्ठिर का ऐश्वर्य क्यों बढ़ा है। यदि चिसी श्रियम तात है, यदि तुम भी ऐसी लक्ष्मी चाहते हो तो शीलवान बनो। तुम्हारे अंदर विनयशीलता नहीं है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, तुम्हारे अंदर जलन है, तुम दूसरे के अनिष्ट से सुखी होना चाहते हो। दुर्योधन, कभी भी तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। शीलवान भव पुत्र के, जो शीलवान होता है, शीलवान माने चरित्रवान, श्रेष्ठ गुणवान होता है, उसके लिए संसार में कोई चीज बाकी नहीं है। मानधाता ने एक दिन में सारी पृथ्वी को जीत लिया शील शस्त्र से, और जन्मेजय ने 3 दिन में सारी पृथ्वी को जीत लिया, और नाभाग ने 7 रात्रि के अंदर सब कुछ जीत लिया। शीलवान तुम बनो। कहते हैं महाराज, ये शीलवान कैसे बना जाए? कि शीलवान राजाओं की बातें सुनो। सुनाओ महाराज। तो कहने लगे कि एक बार नारद जी ने हमको शीलवानों की कथा सुनाई। क्या सुनाया? कि जब प्रह्लाद जी राजा बन गए और अपने शील गुण से संपन्न होकर वे त्रिलोकी के शासक बन गए, इंद्र को भी अपने स्वर्ग से हटा दिए, त्रिलोकी के शासक बन गए, तब वो इंद्र बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति के पास जाकर बोले कि गुरुदेव, राज्य तो मेरे से अब प्रह्लाद जी ने ले लिया, प्रह्लाद जी को मार हम सकते नहीं, भगवान की भक्ति किया हुआ है, दोष उसमें कुछ बता सकते नहीं, क्योंकि वो हमसे ज्यादा गुणों में श्रेष्ठ है। अब तो हमारा एक ही काम बाकी है, कल्याण की बात बताओ। कल्याण कैसे हो? तब उन्होंने कल्याण की शिक्षा दी। तब कहा, इससे भी कोई विशेष ज्ञान आपके पास है क्या? इतना बड़ा ज्ञान दिया कि भाई इससे बड़ा तो ज्ञान मेरे पास तो नहीं है। शुक्राचार्य जी के पास था, तो शुक्राचार्य जी के पास गए। शुक्राचार्य जी के पास गए, कहने लगे, महाराज आपका चेला है प्रह्लाद, दैत्यों के गुरु है आप, उसने हमारे स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया, अब हम तो इधर उधर ऐसे ही फिरे, तो गुरु जी से मैंने ज्ञान लिया, तो आप भी हमको ज्ञान दो। तो उन्होंने ज्ञान दिया कि लो बेटा, ज्ञान के लिए कोई किसी का पराया नहीं होता है, तुम भी ज्ञान लो। खूब ज्ञान दिया। सुन सुना करके इंद्र ने पूछा कि महाराज, इससे ऊंचा भी कोई ज्ञान है क्या? ब्रह्म की बात, आत्मा की बात, जीव की बात, इससे भी ऊंचे कोई? हाँ, इससे भी ऊंचा ज्ञान तो है। तो वो ज्ञान किसके पास मिलेगा महाराज? कि वो प्रह्लाद के पास ही मिलेगा। तो प्रह्लाद जी के पास भेजा। अब देखे, प्रह्लाद जी के पास कैसे जाऊं? प्रह्लाद से तो, प्रह्लाद ने तो मेरा राज्य छीन लिया। तो वो इंद्र है, वो ब्राह्मण बनकर के प्रह्लाद जी के पास गया। ब्राह्मण बन करके और जा करके कहा, हे प्रह्लाद जी, वैसे आप भगवान के भक्त हैं और मैं एक ब्राह्मण हूं, तो कायदे से तो मैं ब्राह्मण होने के नाते आपको शारीरिक सम्मान तो कैसे कर सकता हूं, आपके चरण वगैरह तो छू नहीं सकता हूं, लेकिन हृदय में मेरे बड़ा सम्मान है, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूं। तो प्रह्लाद जी ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, त्रिलोकी का काम संभालता हूं, तुमको पता है ब्राह्मण देवता ये निठल्ले आदमियों का काम है, मैं तुमको नहीं, किसी और के पास जाओ, या जब मेरे पास खाली समय है तो आ जाना। तो महाराज, खाली समय के लिए आप ही बोलिए, आप जब मुझे बताएं कि इस समय आ जाओ, मैं उस समय आ जाऊंगा। तब प्रह्लाद जी प्रसन्न हो गए। प्रह्लाद जी ने कहा, तेरे अंदर तो कुछ ज्ञान की जिज्ञासा है भाई। तो कहला, बैठ, हम तुमको ज्ञान देते हैं, बोलो क्या चाहते हो, क्या ज्ञान चाहते हो? महाराज, हम आपसे ये ज्ञान चाहते हैं कि आप त्रिलोकी का राज्य करते हैं फिर भी आप इसमें फंसे हुए नहीं है, ये क्या बात है? नहीं तो एक राजा थोड़ी सी जमीन पर राज्य करता है, छोटी सी जमीन पर एक नगर का राजा होता है, वही उसमें अभिमान करता है, आप नहीं फंसे हो, इसका कारण क्या है महाराज? तो प्रहलाद जी ने कहा, देखो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मैं कभी भी ब्राह्मणों के साथ ईर्ष्या नहीं करता, निंदा नहीं करता, उनके ऊपर मैं राजा हूं ऐसा समझकर अभिमान नहीं करता, और ब्राह्मण लोग जो मुझे नीति का उपदेश देते हैं मेरे पर विश्वास करके मैं उनकी बातों को ध्यान से सुनता हूं, और उन्होंने इतना मुझे उपदेश दिया है जैसे मधुमक्खी फूलों के रस से छत्ते को सिंचित कर देते हैं, ऐसे ये ब्राह्मण लोग शास्त्रों की सार बात ढूंढ ढूंढ करके और मुझे सिंचित कर देते हैं, अतएव मैं इन ब्राह्मणों की बात का बहुत आदर करता हूं। चंद्रमा जैसे नक्षत्रों पर शासन करता है इसी प्रकार से मैं अपने जाति वालों पर शासन करने में बल प्राप्त करता हूं। शुक्राचार्य जी की नीति कम है ब्राह्मण, कैसी विचित्र नीति वे बताते हैं, तो मैं उनकी बात का आदर करता हूं। मैं तुम्हारी गुरु सेवा से बड़ी जो है प्रसन्नता का अनुभव करता हूं, तुम कोई मेरे से वरदान मांगो। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज दे दोगे ना, मेरे को वरदान दे दोगे ना, तुम मांगो। प्रहलाद है भगवान नारायण के चरणों का सेवक, वो कभी भी मांगने के लिए बोलने के बाद पीछे हटने वाला नहीं, मांगो तुम क्या मांगते हो। भवतः शीलम इच्छामि, आपके अंदर शील गुण बड़ा विचित्र है महाराज, आपका शील गुण लेना चाहता हूं। अच्छा शील गुण लेना चाहते हो, तो प्रसन्न हो गए और जो है फिर उसी समय उनका कि मेरे अंदर जो शील है वो इस ब्राह्मण में आ जाए, वरदान दे दिया, और उसके बाद प्रहलाद जी मुंह लटका के बैठ गए। इतने में प्रहलाद जी के अंदर से एक तेज निकला, कौन हो भाई तुम? मेरा नाम शील है, आपने इस ब्राह्मण में जाने के लिए मुझे बोल दिया, इसलिए मैं आपसे विदा लेने के लिए आया हूं, अब मैं आपको छोड़ करके इस ब्राह्मण में जा रहा हूं। आपके यहां इतने दिन तक मैं रहा और भगवान की भक्ति से बड़ा पुष्ट हुआ, लेकिन आज आपने मुझे त्याग दिया है तो मैं इसके साथ जा रहा हूं। प्रहलाद जी चुप हो गए, कहा कि अब आज के बाद इस ब्राह्मण में निवास करूंगा, जिसने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुमने वरदान दिया है उस ब्राह्मण को हम खाली आपने खाली नहीं जाने दिया, तो मैं उसके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि भाई मैंने तो वरदान में आपको भेजा है, आप जाइए। गए वो शील जाकर उसमें प्रवेश कर गया। इतने में ही प्रहलाद जी के अंदर से एक और तेज निकला, अरे तुम कौन हो भाई? मैं धर्म हूं, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? तुमको छोड़कर इसलिए जा रहा हूं कि जहां शील नहीं होता वहां पर मैं नहीं रह सकता, मेरा कायदा मैं शील के पीछे पीछे चलता हूं, इसलिए मैं जा रहा हूं। इतने में ही फिर एक तेज निकला कि आप कौन है जी? कि मैं सत्य हूं। तो आप कहां जा रहे हो? जहां शील और धर्म रहता है वहां पर मेरा निवास है, अब मैं आपके पास नहीं रहूंगा। अब एक और फिर निकला तेज, अरे भाई आप सब लोग मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो? आप कौन है? कि मैं सदाचार हूं। तो आप सब मेरे अंदर रहते थे, मुझे पता ही नहीं कि यही तो बात है, एक शील गुण रहता है उसमें कितने गुण रहते हैं उस गुणवान व्यक्ति को पता नहीं रहता, तो मैं अब आपको छोड़ के जा रहा हूं, सदाचार भी छोड़ के चला गया। अब ये बल था, बल इंद्रिय बल, बुद्धि बल, शरीर बल, ये बल था, ये भी अंदर से निकला कि मैं तुम्हारा बल जा रहा हूं, क्योंकि भाई सदाचार नहीं है तुम्हारे पास। अब इतने में एक देवी प्रकट हुई, आप कौन है? भाई प्रहलाद, तुमने हमारी बड़ी उपासना की, हमारे पति की बड़ी उपासना की, लेकिन हमारे पतिदेव ने कह रखा है कि जहां शील हो, जहां धर्म हो, जहां सत्य हो, जहां सदाचार हो, जहां इंद्रिय बल हो, बुद्धि बल हो, शरीर बल हो, वहां पर तुम्हारा विशेष निवास रहेगा। तो भाई मैं तो तुमको छोड़ के जा रही हूं। प्रहलाद जी ने कहा कि कमल नयने, आप मुझे छोड़ के चली जाओगी तो फिर मैं कैसे स्वर्ग का इनका शासन करूंगा, आपके बल पर ही तो कर रहा था। तो माताजी ये बताओ कि ये ब्राह्मण कौन था, ये मामूली ब्राह्मण नहीं लग रहा है, ये ब्राह्मण कौन था, इसका तेज, इसका स्वरूप कुछ और ढंग से ही लग रहा था। अब देखो इतनी चीज इस ब्राह्मण में चली गई, ब्राह्मण देखो कैसा हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा सहशक्र है, अरे ये इंद्र है, ब्राह्मण के वेश में आया, यदि इंद्र वेश में आता तो आप इसको शायद कभी उपदेश नहीं देते, आपका ऐश्वर्य, आपका ये सब शील वगैरह सब इसने छीन दिया, अब आप वापिस अपने त्रिलोकी के शासन से हट करके आ जाओ और बैठ करके आप तो उस भक्ति में ही लगो जिस भक्ति से आपने सब कुछ प्राप्त किया है, वापिस शीलवान बन जाओगी, तुम्हारे अंदर शील का अभाव नहीं होगा। तब वो जो है लक्ष्मी जी महाराज वो चली गई। दुर्योधन ने ये कथा सुनी, दुर्योधन ने पिता से पूछा कि महाराज ये शील गुण मेरे अंदर कैसे आ सकता है, क्या उपाय है? धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन तेरे पास शील आना बड़ा मुश्किल है, तू शीलवान नहीं बन सकेगा। ये क्यों? शीलवान होने के लिए सबसे पहली शर्त है अद्रोह है सर्वभूतेषु, किसी भी प्राणी से किंचित प्रकार का भी द्रोह न करे, द्वेष न रहे मन में। तेरे मन में कोई द्वेष तो नहीं है किसी के प्रति? महाराज है तो फिर ऐसी बातें क्यों बनाता है? अनुग्रहश्चय और दया करना, दया करना आता है तेरे को? दान देना आता है? दान क्या, तू किसी के अधिकार की चीज ही नहीं दे सकता, दूसरे की चीज है, ये चीज आपकी है मेरे पास है। नहीं देता साहब, अरे ये चीज आपकी है तो आपकी मुझे दे ही देनी चाहिए। नहीं देता, तू पांडवों का हक नहीं दे सकता, तेरे अंदर शील कहां से आएगा? जिस काम को करने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हो उस आदमी के पास में शील गुण ध्या करता है। यदि तुम युधिष्ठिर जी से अच्छे बनना चाहते हो तो पहले अंदर से अच्छे बनो, तुम बाहर से अच्छा बनना चाहते हो, शीलवान बनो दुर्योधन। पितामह भीष्म ने कहा कि उसके बाद उसके ये सब बातें समझ में आ गई, लेकिन वो आचरण में नहीं ला पाया, इसलिए शीलवान बनो। जी कह रहे हैं शीलम प्रधानम पुरुषे कथितम थे पितामह, बहुत अच्छी बात शील के विषय में बताई। अब महाराज एक बात है कि हमारे मन में जो आशा बनती है, चाहे व्यक्ति के प्रति बने चाहे वस्तु के प्रति बने, ये आशा हमको बहुत परेशान करती है। मैंने बड़ी आशा की थी, मैंने दुर्योधन से ही आशा की थी कि दुर्योधन है वो सुधर जाएगा, नियत साफ हो जाएगी, दुर्योधन युद्ध को टालेगा, दुर्योधन अपने भाइयों को थोड़े ही कोई युद्ध के अंदर झोंकेगा, अपने परिवार को युद्ध में थोड़ी लगा देगा, ऐसी ऐसी मेरे मन में आशाएं थी। उन आशाओं को दुर्योधन ने तोड़ दिया, मैं बड़ा दुखी हो गया। तो इन आशाओं से पिंड छुड़ाना महाराज बड़ा कठिन है, पर्वत को उठा सकते हैं, आकाश का छेदन कर सकते हैं, समुद्र की तलहटी में जा सकते हैं, सही एकदम तह में जा सकते हैं, पर अंदर से आशा है ये नहीं मिटती महाराज, क्या उपाय है। पिता मैंने कहा कि देखो एक सुमित्र नाम का राजा था, शिकार खेलते गया, बहुत बड़ी सेना लेकर गया, करते करते एक हिरण को उसने बाण मारा, हिरण बहुत तेज दौड़ा तो उसने भी अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। अब वो राजा भूल गया कि इस समय मैं राजा हूं और मेरे साथ सेना मंत्री सब है, सब भूल गया, बस उसके पीछे ही दौड़ता गया। और वो हिरण इतना तेजी से यूं छलांग लगाए, यूं छलांग लगाए, फिर बाण छोड़ा, वो कई बाणों से बिंद गया वो। और वो हिरण ऐसा था कि गव्युति मात्रेण दो कोस तक दौड़े और फिर वापिस आ जाए, और फिर पास में फिर आकर के फिर दौड़े, फिर पास में आए, फिर दौड़े, फिर पास में आए। वो भी देख रही क्या है हिरण है ये। लेकिन शिकार एक ऐसी चीज है, आशा एक ऐसी चीज है कि अब हम इसको मार देंगे, अब पकड़ लेंगे। इस आशा से वो राजा पथ भ्रष्ट हो गए, बहुत दूर चला, घनघोर जंगल में चला गया। हिरण जाकर उस जंगल के अंदर छिप गया, कुछ पता नहीं चला। इधर राजा एक आश्रम में गया, राजा बड़ा भूखा प्यासा था, आश्रम के अंदर ऋषि रहते थे, उस ऋषियों और वहां के ऋषियों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्होंने उस राजा से पूछा कि महाराज कौन देश से आए हो, ये तलवार वगैरह बंधी हुई है, क्या बात है, किससे क्या आप लड़ने के लिए आए हो, कहां से पधारे हो, कौन से कुल में जन्म हुआ है, कुतः प्राप्तो सी, कस्मिन कुले तुम जाते हैं। सब बात कहा कि देखो मैं सहस्रार्जुन के हई कुल में पैदा हुआ हूं, बहुत बड़ी सेना लेकर आया था लेकिन एक हिरण के पीछे आशा के कारण से दौड़ा दौड़ा सब कुछ छोड़ दिया, मैंने आशा में बंद गया। हिमालय पर्वत से भी बड़ी दुर्गम है ये आशा, समुद्र से भी ज्यादा गहन है, आकाश से भी ज्यादा लंबी चौड़ी है, इस आशा से कैसे पिंड छुड़ाएं, ये हम आपसे प्रश्न करते हैं, आशा से कैसे पिंड छुड़ाएं। आप लोग तो सदा तपस्या में रहने वाले हो, आपका तो शायद कभी आशा से काम पड़ा नहीं होगा, इसलिए आप इसका खूब अच्छा उपाय भी बता सकते हो। उन ऋषियों ने कहा कि सुनो महाराज, उनमें एक ऋषभ नाम का ऋषि था, उसने कहा सुनो महाराज सुमित्र जी, मैं अपनी एक बात बताता हूं, बहुत पहले की बात है, एक बार घूमते घूमते मैं नरनारायण ऋषि के आश्रम में चला गया, वहां पर एक बहुत बड़ा बेर का वृक्ष है, उसके नीचे नरनारायण महाराज विराजमान रहते हैं और असंख्य ऋषि मुनियों को उपदेश देते रहते हैं। वहां पास में एक कुंड है जिसमें गंगा जी का जल आता है, उसके पास अनेक ऋषियों के आश्रम हैं। उन आश्रमों में मैं घूमते घूमते एक तनु नाम के ऋषि के आश्रम में गया, बहुत पतले थे वो ऋषि और बहुत लंबे भी थे, जितने आदमी होते हैं ना शरीर से उनसे आठ गुने लंबे, लेकिन चिटली अंगली जितने पतले बस, और आठ गुने लंबे ऐसे, तुम ऐसे अद्भुत, और ऐसी चमक उनकी आंख में, चमक उनके कपोलों में, चमक उनके वाणी में, बड़ा रस उनके चाल में, और उनके हर क्रिया के अंदर बड़ी दिव्यता, नाक कान वगैरह सब उनके विचित्र रंग के। ऐसे दुबले पतले ब्राह्मण को और इस रूप में देखकर मैं तो डर भी गया कि भाई कोई कैसे तेजस्वी, कोई मुझे शाप तो नहीं दे दे। मैंने उनके चरणों को छूकर प्रणाम किया और अपना गोत्र, पिता का गोत्र, पिता का नाम वगैरह सब दिया। पुराने जमाने में यही होता था कि अमुक पिता का पुत्र मैं अमुक गोत्रोत्पन्न आपको प्रणाम करता हूं, मैंने बोल दिया। उस समय हम लोग वहां बैठे थे, उन्होंने पूछा कि ऋषिवर आप कहां से आए हो, ऐसी पतली मीठी आवाज उनकी। मैंने कहा महाराज मैं तो आपके दर्शनों से कृतार्थ हो गया। अच्छी बात, बस इतनी सी बात हुई कि एक राजा आया चिल्लाते चिल्लाते, मेरा भूरी द्युम्न नाम का लड़का इस जंगल के अंदर लापता हो गया है, क्या पता वो जीवित है कि नहीं। मैं वीरद्युम्न नाम का राजा अपने पुत्र को देखने के लिए आया हूं, मुझे अपना पुत्र कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे लिए दुर्लभ हो गया, मेरा एक ही बेटा है इस जंगल में खो गया, अब मैं क्या करूं, उससे मिलने की बड़ी इच्छा हो रही है, ऐसे उस ऋषि के सामने बोलने लगा। वो ऋषि उस समय चुपचाप नीचे गर्दन किए बैठे रहे, कई देर तक वो ध्यान करते रहे। तब वो फिर राजा बोला कि हे ऋषि क्या ध्यान लगाया आपने, इस संसार के अंदर कौन सी ऐसी वस्तु दुर्लभ है जो आप नहीं बता सकते, आशा से भी बड़ी कोई चीज होती है क्या, आप मुझे बताओ, छिपाने योग्य बात नहीं हो तो बताओ। तो उस मुनि ने कहा कि आपके पुत्र ने शायद कभी किसी ऋषि का अपमान किया होगा। अर्थयन कलशम राजन कांचनम वल्कलानि चे, मैं ध्यान करके ये देख रहा था कि आपका छोटा बेटा छोटी अवस्था में क्यों आपसे अलग हो गया, कहाँ चला गया। हाँ, उसने एक बार एक ब्राह्मण के यहाँ एक स्वर्ण कलश और वल्कल मांगने के लिए ब्राह्मण आया, उसका अपमान कर दिया, उसकी इच्छा पूरी नहीं की, तो ब्राह्मण निराश हो गए। निराश होने के कारण से अब वो तुम्हारा बेटा तुमसे अलग हो गया। तब उस राजा ने कहा कि महाराज ये आशा का त्याग कैसे किया जाए, इस आशा से भी दुबली कोई चीज होती है क्या। ऋषभ ने कहते हैं कि राजा से ऐसा कहने पर फिर वो चुपचाप बैठ गए और फिर वे कहने लगे कि महाराज बताइए ना, आशाया किम कृषत्वंचय किंचे व भुवि दुर्लभम, आप धर्म और अर्थ की बात को जानने वाले हैं, आशा से कमजोर कोई है दुनिया में, आशा से बढ़कर दुर्बल कोई चीज है। तो ऋषि ने कहा कि देखो आशा के समान या आशावान के समान कोई दुर्बल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले बहुत राजाओं के सामने जाकर याचना की थी, उस याचना का ये फल हुआ कि आज मुझे कितना दुर्बल होकर के ऐसे रहना पड़ता है। आपका मतलब क्या है महाराज कि याचना करने वाला आशा करने वाला अर्थात जिसने आशा की है वो तो दुबला हो जाएगा, जिसने आशा नहीं की वो संसार में श्रेष्ठ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इससे बढ़कर और कोई बढ़िया बात नहीं हो सकती। आपका शरीर दुर्बल कैसे हो गया महाराज, तो वे मुनि कहने लगे कि भाई जो याचक धैर्य धारण करे, आवश्यक वस्तु भी किसी से न मांगे, संसार में वो दुर्लभ है, ऐसे पुरुष का दर्शन करना चाहिए, और यदि कोई मांग ले तो उसको मना नहीं करना चाहिए। दो आदमी संसार में सबसे श्रेष्ठ होते हैं, या तो मांगे ही नहीं, और यदि किसी ने मांग लिया तो फिर देने में पीछे नहीं रहना चाहिए। जो याचक को आशा दिला करके और फिर उसको पूर्ण नहीं करता है, वो मेरे से भी ज्यादा दुर्बल होता है। कृतघ्न होता है, आसक्त होता है, कठोर आदमी होता है और आलसी होता है, ये सदा आदमी चिंता में डूबे रहते हैं, वो मेरे से भी ज्यादा दुबले पतले रहते हैं। इसलिए महाराज ये किसी से भी आशा करना छोड़ दो। राजा ने कहा, वाह महाराज, अब मैं पुत्र की इच्छा का हृदय से त्याग करता हूं। उसने हृदय से त्याग कर दिया, अब मैं पुत्र की आशा नहीं करूंगा। इतने में ऋषि ने आंख बंद की, कहने लगे, देखो संसार की वस्तु मिलने वाली मिलती है, नहीं मिलने वाली नहीं मिलती है, आशा का त्याग करने से सुखी हो जाता है। तुमने पुत्र की आशा का त्याग कर दिया, ये देखो ये पुत्र हमने लाकर रख दिया। तो वो पुत्र लेकर के आ गए और आने के बाद फिर वो सुखी हो गए। ऐसी बात है। इस प्रकार से ये राजधर्मानुशासन पर्व है, वो यहां आज पूरा हुआ है। इसमें शांति पर्व में कई खंड है, हर पर्व में खंड है कई। उसमें एक हिस्सा है ये राजधर्मानुशासन पर्व। अब आएगा आपद धर्म, पितामह भीष्म उसके ऊपर बोलेंगे। मेरा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्ना